आरवी ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा तो वो परेशान सी उसे देख रही थी। आरवी उनके पास आकर बैठ गई और सहजता से बोली, आप बेवजह इतना परेशान हो रही हैं बड़ी माँ, सब ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया आज मेरे साथ। बस अंशु के स्कूल के बाहर भैया मुझसे मिलने आ गए थे और उन्होंने देख लिया, इसलिए थोड़ा नाराज हो गए थे, पर अब सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। आरवी ने आधा सच और आधा झूठ मिलाकर उनके सामने रख दिया ताकि वो चिंता ना करे। आरवी की बात सुनकर अर्पिता जी सोच में पड़ गई। वहीं सामने बैठे सुभाष जी की निगाहें उस पर ठहर चुकी थी। उन्होंने उसके चुप होते ही सवाल किया, आप अर्जुन की बात कर रही हैं? आरवी ने उनकी तरफ निगाहें घुमाई और हामी भरते हुए बोली, जी। उसका जवाब सुनने के बाद सुभाष जी और अर्पिता जी दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सुभाष जी ने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, बेटा आज आप मिल ली तो ठीक है, पर दोबारा उस घर के किसी सदस्य से मत मिलिएगा, शान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इससे आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। आरवी खामोशी से उनकी बात सुनती रही और साथ ही उनके चेहरे के भावों को भी देखती रही। फिर जैसे ही सुभाष जी चुप हुए, उसने तुरंत ही उनसे सवाल कर लिया, क्यों डैड, क्यों मैं उस फैमिली के किसी सदस्य से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, क्यों मिस्टर मल्होत्रा इतनी नफरत करते हैं ठाकुर खानदान से? उसके सवाल सुनकर सुभाष जी कुछ परेशान से हो गए। उन्होंने बात टालते हुए कहा, वो सब हम आपको नहीं बता सकते, आप बस इतना समझ लीजिए कि आप उस परिवार से जितना दूर रहेंगी उतना ही आपके और शान के रिश्ते के लिए बेहतर होगा। आरवी को उनसे शायद इसी जवाब की उम्मीद थी। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, अब भी कोई मुझे कुछ बताना नहीं चाहता, उनकी नफरत का शिकार मैं बन रही हूं, पर मुझे ये तक नहीं पता कि उस नफरत की आखिर वजह क्या है। मुझे सच जानना है, अब बात मेरे रिश्ते की है इसलिए सच जानना बेहद ज़रूरी है मेरे लिए। अगर आपको लगता है कि मुझसे सच छुपाकर आप ठीक कर रहे हैं और इससे हमारा रिश्ता बच जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चाहे सच मुझे पता चले या ना चले, पर यह सच हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर चुका है और धीरे धीरे शायद टूटने की कगार पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप सब बस सच छुपाइए मुझसे और मैं बिना अपना गुनाह जाने खामोशी से उनकी दी सज़ा भुगतती हूँ। कम से कम जब तक सह सकूंगी तब तक तो सह ही लूंगी। जब तक हिम्मत है उनकी नफरत से लड़ने की, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रहूंगी, और जिस दिन हिम्मत हार गई उसके बाद इस रिश्ते का जो होना होगा हो जाएगा। आरवी की आवाज़ में नाराज़गी के साथ साथ बेबसी और दर्द भी झलक रहा था, जिसे दोनों महसूस कर पा रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आरवी अब उठकर खड़ी हो गई और जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, पीछे से अर्पिता जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आज आपको अकेडमी नहीं जाना? आरवी रुकी नहीं, उसने आगे बढ़ते हुए ही जवाब दिया, ठाकुर की बेटी हूं ना, उसी की सज़ा है कि अब मैं इस घर की चारदीवाली से कहीं बाहर नहीं जा सकती। उसका रोषपूर्ण जवाब सुनकर अर्पिता जी खामोश हो गईं। दोनों की परेशान निगाहें एक दूसरे की तरफ घूम गईं। आरवी को सब बता देना चाहिए हमें, उनका हक है सब जानने का, अर्पिता जी ने सुभाष जी को देखते हुए गंभीरता से कहा। उनकी बात सुनकर सुभाष जी के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। अपने एक बच्चे को वो सब बताने की भूल की थी हमने, जिसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं, अब वही भूल दोबारा नहीं कर सकते। एक बच्चे के मन में हमारे वजह से नफरत भर गई, अब दूसरे के मन में नफरत नहीं पनपने दे सकते हम। सुभाष जी का जवाब सुनकर अर्पिता जी आगे कुछ न कह सकी। आगे के आधे दिन आरवी रूम से बाहर ही नहीं निकली, जिस वजह से दोनों ही परेशान हो गए थे, पर अंशु के आने पर उनकी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि आरवी एक बार फिर नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। आगे का आधा दिन उसका अंशु, अर्पिता जी और सुभाष जी के साथ बीता। दूसरे तरफ शान अपने कैबिन में बैठा था, निगाहें सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जिस पर कोई एक्ट हो रहा था, शायद ऑडिशन चल रहा था। शान का सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था, तभी अचानक उसके कानों में रेहान की चिढ़ी हुई सी आवाज़ पड़ी, शान आज तो तू मुझे बता ही दे कि आखिर तू करना क्या चाहता है। शान की निगाहें अब लैपटॉप की स्क्रीन पर से हटकर गेट की तरफ चला गया, जहां खड़ा रेहान उसे परेशान सा देख रहा था। शान ने अपनी भौं उछालते हुए बेफिक्री से पूछा, अब क्या हुआ है तुझे, किस बात पर इतना चिढ़ रहा है? रेहान ने उसका सवाल सुना और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे ना कभी कभी तू एक पहेली जैसा लगता है, जिसे मैं कभी सुलझा ही नहीं सकता। मतलब तुझसे कुछ वक्त भी शांति से नहीं बैठा जाता, हर दूसरे दिन तुझे कोई ना कोई धमाका करना होता है, और तू मुझे पहले कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझता। अरे यार, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों सब अकेले करता है? क्यों मुझसे सब छुपाता रहता है, जब बाद में मुझे पता चलना ही है? अगर तू मुझे पहले ही बता दे कि तू क्या करने वाला है, तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? कम से कम मुझे अगर पहले से बात पता होगी तो ऐसे झटका तो नहीं लगेगा जैसे तेरे सडनली सरप्राइज रिवील करने से लगता है। पर नहीं, तुझे तो मुझे शौक ही देना होता है, देखियो किसी दिन तेरा दिया शौक मेरी जान ले लेगा। शान इतनी देर से खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था, पर जैसे ही रेहान ने आखिरी की लाइन कही, शान ने एकाएक हल्के गुस्से में कहा, बकवास बंद कर अपनी। शान को गुस्सा करते देखकर रेहान ने भी हल्के गुस्से में कहा, मैं क्यों बंद करूं, तू कुछ भी करता जाए और मैं कुछ बोलूं भी ना। शान उसकी बातों से बुरी तरह चिढ़ गया और खींचते हुए बोला, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू, क्या हो गया है ऐसा कि तूने आफत मचाई हुई है। शान का सवाल सुनकर रेहान ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है, एक प्ले ऑर्गेनाइज किया है बस, तो इसमें इतना चौंकते वाली और नाटक करने वाली कौन सी बात है, कोई पहली बार तो प्ले नहीं करने जा रहे, पहले भी बहुत बार ऑर्गेनाइज किया हुआ है, पहले और अब में फर्क है, इनफैक्ट बहुत बड़ा फर्क है। हाँ ये बात ठीक है कि हमने बहुत से प्ले ऑर्गेनाइज किए हैं, पर वो तेरी कहानी नहीं होती थी, और इस बार तू प्ले के जरिए अपनी जिंदगी के बंद पन्नों को दुनिया के सामने खोलने जा रहा है, और मुझे ये बात आज पता चल रही है जबकि अगले दिन से रिहर्सल शुरू होने वाली है। मैं ना समझ नहीं पा रहा कि आखिर तू करना क्या चाहता है, मतलब जिन राजों को तूने हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा आज उसे दुनिया के सामने क्यों लाना चाहता है तू, और अगर तुझे ये करना ही था तो पहले मुझे कुछ क्यों नहीं बताया, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। रेहान अब काफी सीरियस और साथ ही परेशान लग रहा था, वो अपने सवालों के जवाबों का इंतजार करने लगा। शान कुछ पल खामोश बैठा रहा, फिर उसने उसे देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, मुझे इंतजार था सही वक्त का, और अब मैं अमरजीत ठाकुर की असलियत को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। रही बात तुझे पहले कुछ न बताने की, तो मुझे पता था कि तू ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसीलिए पहले तुझे कुछ नहीं बताया। अब सब कुछ फाइनल हो चुका है, कल से रिहर्सल स्टार्ट है जिसे तुझे ही डायरेक्ट करना है, इसीलिए अब तुझे बता रहा हूँ। रेहान उसकी बात सुनकर कुछ देर तक उसको घूरता रहा, फिर उसने शान के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, कार्तिक बता रहा था कि तूने कास्टिंग फाइनल कर ली है, पर ड्रामा के मेन लीड अभी तक सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो अपने और भाभी की जगह किसे चूज करने वाला है। अपना रोल मैं खुद करूंगा, शान ने जैसे ही ये कहा, रेहान आंखें फाड़े उसे देखने लगा। उसको तो जोरों का झटका जोरों से ही लगा था। उसने आंखें फाड़े शान को देखते हुए हैरानी से कहा,
क्या कहा तूने, दोबारा कह, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, मतलब तू और एक्टिंग, इम्पॉसिबल, तू जरूर मजाक कर रहा है।